चंद्रिका लब्धिसार क्षपणासार लेक्चर नंबर 8।
ओम नमः शिवाय।
आचार्य श्री निमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने इस लब्धिसार ग्रंथ की रचना की है, उसी के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका लब्धिसार क्षपणासार ढूंढारी भाषा में लिखी है, जिसका हिंदी अनुवाद हम देखते हैं। हम आए हैं पृष्ठ संख्या 25 पर। लब्धिसार भूमिका का अपना प्रकरण चल रहा है और हमने देखा था कर्मों की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, उसमें जो सत्व की स्थिति सत्व जिसको कहते हैं, सत्ता में जो कर्मों की स्थिति है उसका घटने का जो कुछ विधान है, प्रोसेस है, दो पद्धति बताई है। एक है स्थिति कांडक घात, अनेक निषेकों का घात होकर उसके परमाणु नीचे के निषेकों में दिए जाते हैं, आ मिलते हैं। अभी कथन में दिए जाना, आ मिलना, कुछ भी निक्षेप करना, इसे अलग अलग कथन होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम? अंतर्मुहूर्त में यह कार्य संपन्न होता है तो उसको कहेंगे स्थिति कांडक घात। दूसरा एक विधान है, उसका नाम है अपकृष्टि विधान। अपकृष्टि ने अपकर्षण होना, स्थिति की बात चल रही है यहाँ पर, स्थिति के घटने की बात चल रही है, तो यहाँ स्थिति का अपकर्षण होता है, यानी जो निषेक है उसमें से परमाणु नीचे आते हैं। निषेक नष्ट नहीं होते, उसमें से कितने ही परमाणु नीचे आ जाते हैं। उदय के समय तक केवल अपने अपने नीचे एक आवली में नहीं दिए जाएंगे। तो हमने देखा ये पैराग्राफ हम फिर दोबारा पढ़ेंगे। 25 नंबर पृष्ठ। विवक्षित कर्म प्रकृति के सर्व निषेकों संबंधी, निषेक हमने देखे ना आड़ी लाइन, हम जो दिखाते हैं एक एक स्थिति का, एक एक समय बताने के लिए एक एक निषेक बताते हैं। सर्व परमाणुओं को, यानी जितने नंबर ऑफ परमाणु है टोटल, उसको अपकर्षण भागार का भाग देकर, एक विशिष्ट संख्या है अपकर्षण भागार उसका नाम है, उस संख्या से भाग देकर एक भाग मात्र परमाणु ग्रहण किए। किसके लिए? अपकर्षण करने के लिए। इतने परमाणुओं का अपकर्षण होगा, अपने निषेक छोड़कर नीचे के निषेकों में जा मिलेंगे, उसका नाम अपकृष्ट द्रव्य है। जितने परमाणु अपकर्षित होते हैं उसका नाम है अपकृष्ट द्रव्य। उस अपकृष्ट द्रव्य में से अभी जो एक भाग प्रमाण अपकर्षित हो गए, उसमें से कितना ही द्रव्य ने कितने ही परमाणु उदयावली में दिए जाएंगे, कितने ही परमाणु बीच में वो उसके ऊपर गुणश्रेणी में दिए जाएंगे, और कितने ही परमाणु उसके ऊपर जो उपरीतन स्थिति है, शेष जो निषेक है उनमें दिए जाएंगे। तो यहाँ कहते हैं अपकृष्ट द्रव्य में से कितने ही परमाणु तो उदयावली में मिलाते हैं, कितने ही परमाणु गुणश्रेणी आयाम में मिलाते हैं, और अवशेष परमाणु उपरीतन स्थिति में मिलाते हैं। वहां वर्तमान समय से लेकर आवली मात्र समय संबंधी जो निषेक, उनका नाम उदयावली है। यानी उदय के समय से लेकर वर्तमान समय से लेकर दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे कितने निषेक लेने, तो आवली में जितने समय होते हैं उतने निषेक, क्योंकि एक एक समय में एक एक निषेक रचना होती है, एक एक समय वाला एक एक निषेक है, तो जितने आवली के निषेक है उसको क्या कहेंगे, उदयावली। उनमें उदयावली में देने योग्य द्रव्य को निषेक निषेक प्रति एक एक चयहीन क्रम से मिलाते हैं, यानी जो कुछ कम परंतु ये जो कम का जो प्रमाण है हर निषेक में वो फिक्स है, फिक्स डिफरेंस है, वो उसको चय कहते हैं। उन आवली मात्र निषेकों के ऊपरवर्ती यथासंभव अंतर्मूर्त के समय संबंधी, यथासंभव अंतर्मूर्त इसलिए कहा कहीं छोटा अंतर्मूर्त है कहीं बड़ा होता है, गुण श्रेणी कहाँ की है उस पर उसका साइज उसके आयाम नक्की होता है, उसको गुण श्रेणी का आयाम कहते हैं। नीचे के गुणस्थानों में गुण श्रेणी का आयाम बड़ा होता है और ऊपर ऊपर गुण श्रेणी का आयाम कम होता है। देखो क्या होता है जरा देख लेते हैं, तत्वार सूत्र में भी ये बात आएगी कि असंख्यात गुणी असंख्यात गुणी निर्जरा के अलग अलग स्थान, अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम देखते हैं कि कहीं पर ये जो उदयावली और ये गुण श्रेणी और कहीं पर गुण श्रेणी लंबी होगी, यहां पर भी असंख्यात गुणा है परंतु इसमें अधिक नंबर ऑफ निषेक है। अब जो ऊपर से अपकर्षित द्रव्य गुण श्रेणी में दिया जाता है वो कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अधिक में, और यहाँ जो अपकर्षित द्रव्य हो कितने में, द्रव्य कम में, परंतु जहां गुण श्रेणी आयाम छोटी होते वहां अपकर्षित द्रव्य भी बहुत बढ़ जाते क्योंकि उसके तो भागार वगैरह अलग होते। एक तो यहाँ द्रव्य ज्यादा आता है और कम निषेकों में मिलता है, उसके कंपेरिजन में यहाँ द्रव्य कम आया है और अधिक निषेकों में मिला, तो जब वो खिर जाएंगे तो यहाँ कम खिरेंगे और यहाँ बहुत अधिक खिरेंगे। जब ये नीचे आते आते उदय के समय की तरफ आते हैं तो ये जो इतना सारा इसमें द्रव्य हर समय इतना हर समय इतना हर समय इतना आते आते जब उदय का समय आएगा तो उसकी निर्जरा भी बहुत होती है। जहां ऐसी गुण श्रेणी नहीं होती है वहां निर्जरा इतनी नहीं, जितना बन रहा है उतना खिर रहा है। तो मोक्ष मार्ग में इस तरह से अपकर्षण होकर अधिक मात्रा में द्रव्य खिर जाता है, सत्ता में से परमाणु कम होते हैं। तो यहां कहते हैं ये उसका नाम गुण श्रेणी है। गुण श्रेणी आयाम में देने योग्य द्रव्य को, यानी जो ऊपर से अपकर्षित हुए हैं परमाणु उसमें जो गुण श्रेणी आयाम में जितना उसका लॉट दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा, निषेक निषेक प्रति असंख्यात गुणा क्रम से मिलाते हैं। गुण श्रेणी के जितने मान लेते हैं 10 समय हम गिनेंगे गुण श्रेणी के मानते हैं, तो नीचे के निषेक में कम दिया, दूसरे में असंख्यात गुणा, तीसरे में उसे असंख्यात गुणा, चौथे में उसे असंख्यात गुणा, इस तरह असंख्यात गुणा क्रम से दिया जाता है इसलिए उसका नाम है गुण श्रेणी। उनके ऊपरवर्ती, ये तो उदयावली में कितना दिया कैसे दिया वो बताया चयहीन क्रम से, गुण श्रेणी में असंख्यात गुणा क्रम से, उसके ऊपर के जो शेष निषेक है मात्र ऊपर की आवली छोड़ देना जिसको हम अति स्थापनावली कहेंगे क्योंकि उसमें कहीं से द्रव्य नहीं आएगा, उसमें से द्रव्य नीचे जाएगा क्योंकि अपना रूल क्या है, अपना अपना नीचे आवली छोड़कर उसके नीचे दिया जाता है। तो ऊपर के आवली प्रमाण निषेकों में कहीं से भी द्रव्य नहीं दिया जाएगा तो उसको कहेंगे अति स्थापनावली। तो कहते ऊपरवर्ती अवशेष सर्व स्थिति संबंधी निषेकों का नाम उपरीतन स्थिति है, उनमें अंत के आवली मात्र निषेकों में तो द्रव्य नहीं मिलाया जाता, ऊपर ऊपर की लास्ट में क्योंकि उसका द्रव्य नीचे आएगा और उसमें ऊपर से कहीं से आएगा नहीं, वो लास्ट आवली है वहां की, उसका नाम अति स्थापनावली है। उसको छोड़कर यानी अति स्थापनावली में कुछ द्रव्य नहीं दिया जाता, अन्य निषेकों में उपरीतन स्थिति में देने योग्य द्रव्य को, ये बार बार उपरीतन स्थिति में देने योग्य, गुण श्रेणी में देने योग्य, उदयावली में देने योग्य ऐसा क्यों कहा, क्योंकि हमने तो अपकर्षण द्रव्य कितना आता है उसका तो प्रमाण बताया, उसमें से जितना आकर्षित द्रव्य है उसमें से विशिष्ट संख्या उदयावली में दिए जाते, विशिष्ट गुणश्रेणी में दिया जाता है और बाकी रिमेनिंग ऊपर दिया जाता है। तो कहाँ कितना दिया जाता है उसका भी प्रमाण, उसका भी जो भागहार का प्रमाण, अलग अलग ठिकाने अलग अलग है। इसलिए उसमें देने योग्य ऐसा यहाँ शब्द आया। जिसका प्रकरण चलेगा आगे, क्षपणा की बात है, उपशम की बात है, क्षायिक सम्यक्त की बात है, वहां उसकी बात जब आएगी तब वो बताएंगे वहां कितना प्रमाण दिया जाएगा। देखो उसको छोड़कर यानी अति स्थापनावली को छोड़कर अन्य निषेकों में उपरीतन स्थिति में देने योग्य द्रव्य को कैसे दे देते हैं? नाना गुणहानी रचना द्वारा निषेक निषेक प्रति चयहीन क्रम से मिलाते हैं। ये एक वाक्य कल हमने नहीं पढ़ा था, बाकी सब पढ़ा था, है ना? देखो क्या कहते हैं, अभी उपरीतन नीचे उदयावली एक आवली मात्र है, गुण श्रेणी अंतर्मूर्त में मात्र है, और ऊपर कितने ही अनेक सागर इतने निषेक पड़े, सागरों के निषेक पड़े, तो उसमें क्या होता है चय घटते क्रम से दिया जाता है। यानी यहां जितना दिया इसमें थोड़ा कम, इसमें थोड़ा कम, इसमें थोड़ा कम, तो जितना दिया है उसी की बात करेंगे। जितना इसमें दिया है उसका आधा हो जाता है, यहां पर थोड़ा थोड़ा घटते 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 आधा हुआ, फिर थोड़ा थोड़ा करते उसका भी आधा हुआ, फिर थोड़ा थोड़ा करते उसका भी आधा होता है। तो जहां तक आधा होता है उसका नाम है गुणहानि। एक बार आधा हुआ एक गुणहानि, दूसरी गुणहानि, तीसरी बार आधा हुआ तीसरी गुणहानि, चौथी गुणहानि, ऐसे जितनी नंबर ऑफ गुणहानि है, जितनी बार आधा 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 होता है उसको कहेंगे नाना गुणहानि। नाना यानी अनेक, यानी अनेक गुणहानियां होती है। ये समझ में आती है बात? सुश्रुति में ऊपरी तन की, ऊपरी तन में जो दिया जाने वाले द्रव्य की बात है, एक्स्ट्रा जो अपकर्षण द्रव्य निकाला और फिर उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वो कैसे दिया? नीचे जितना दिया वो थोड़ा घटते घटते कहीं जाके वो पहले में जितना दिया उसका आधा हुआ, फिर और घटते गया उसका आधा हुआ, और घटते गया उसका आधा हुआ, ऐसे कितनी बार हुआ? तो पहली गुणहानि, दूसरी गुणहानि, तीसरी गुणहानि, तो उसको कहेंगे टोटल नाना गुणहानि। हाँ असंख्यात होती है, क्योंकि उपरीतन स्थिति देखो ना कितनी लंबी है, सागरों की होती है। यहाँ दृष्टांत, अभी इसी बात को दृष्टांत देके समझाएंगे। जैसे विवक्षित कर्म प्रकृति की स्थिति 48 समय, ये छोटे छोटे उदाहरण इसीलिए देते कि हमारे कुछ समझ में आ जावे। पंडित टोडरमल जी ने स्वयं लिखा है पीठिका में, जो पीठिका हमने जीव कांड में भी पढ़ी थी और कर्म कांड में भी पढ़ी थी, क्या लिखा है कि कर्णानियोग बिल्कुल अभ्यास करने की इन्होंने इतनी जोरदार उसको कहते हैं कि प्रेरणा दी है, सिफारस की, प्रेरणा की, कैसे भी करके कहते हैं इसको पढ़ो। 100% में से 2% भी बातें, 1% भी ख्याल में आए तो कहते निहाल हो जाओ, ऐसे स्वयं उन्होंने बताया। और सचमुच जब हम पढ़ते हैं तब ख्याल में आता है कि कितना कार्यकारी, जब तक नहीं पढ़ते थे ऐसे कि इसको क्या करना, हम तो आत्मा है, बस शुद्ध आत्मा में रह जाओ, ये तो अपनी कल्पना से कुछ ना कुछ सोच लेते। अभी देखेंगे यहाँ दृष्टांत देते हैं, जैसे विवक्षित कर्म प्रकृति की स्थिति 48 समय, उसके निषेक 48, एक एक समय में एक एक निषेक बना है, उनके सर्व परमाणु 25,000, उनको अपकर्षण भागार 5 का भाग देने पर 5,000 आए। हमने क्या देखा था, जो टोटल नंबर ऑफ परमाणु है 25,000 है यहाँ पर, उसको अपकर्षण भागार से भाग देने पर, यहाँ अपकर्षण भागार का प्रमाण क्या माना हमने, 5, तो 25,000 को 5 से भाग देने पर कितना आया, 5,000। तो इन सभी निषेकों में से जो 25,000 परमाणु थे उसमें से 5,000 परमाणु अलग निकाले, ये पांच
एक बात शब्द क्यों डाला है माने वहाँ पहले क्या कहा जो भी द्रव्य था वो द्रव्य को किससे भाग किया और बाद में एक भाग ऐसा शब्द
25,000 को 5 से भाग दिया
5,000
आया
5,000
तो 25,000 के 5 भाग किए उसमें से एक भाग की वैल्यू है 5। यदि हमें इसके 25
मैं तो ऐसा समझ रहा था माने पहली बार पढ़ा कभी कि अभी ये जो आया उसमें से बहुत भाग नहीं एक भाग है
ऐसा नहीं है। देखो इसके अगर हम 25 से भाग देते तो एक भाग की वैल्यू ये 25 से भाग देने एक की वैल्यू 1,000 तो 1,000 समझ। अभी हमने यहाँ कितने देखे 5,000 परमाणु इसमें से निकलकर अभी इन्हीं 48 में से दिया उन्हीं में दिया जाएगा उदयावली में देंगे गुणश्रेणी में देंगे उपरीतन स्थिति में देंगे। अब उसका दृष्टांत द्वारा वो समझा रहे अभी देखेंगे। इसलिए नीचे से तीसरी लाइन सर्व परमाणुओं में से इतने परमाणु ग्रहण करके प्रत्येक निषेक में से थोड़े थोड़े निकले उनमें से 250 परमाणु तो उदयावली में देते हैं। ये तो बिल्कुल एक स्थूल कथन है यहाँ पर दृष्टांत के तौर पर आइडिया आवे हमें 5,000 में से 250 दिए उदयावली में। यहाँ 48 निषेकों में से पहले 4 निषेक उदयावली के हैं क्योंकि आवली के लिए 4 मान लिए हैं तो पहले 4 तो उदयावली के हो गए तो उनमें कितने दिए 250 परमाणु उसमें दिए। और किस तरह से देते हैं तो चयहीन क्रम से मिलाते हैं थोड़ा कम थोड़ा घटते 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 ऐसा दिया जाता है। 1,000 परमाणु गुणश्रेणी आयाम में देते हैं उदयावली के ऊपर गुणश्रेणी आयाम। यहाँ 5वें से लेकर 12वें तक 8 निषेक गुणश्रेणी आयाम के हैं वहां आवली के लिए 4 माने थे या अंतर्मूर्त के लिए 8 माने हैं तो 8 निषेकों में कितना दिया द्रव्य 1,000 और वो कैसा लिया गुणित प्रमाण में दिया। और 3,750 परमाणु टोटल 5,000 देने थे उसमें से 250 तो उदयावली में दिए 1,000 तो गुणश्रेणी में दिए और बाकी बचे 3,750 परमाणु उपरीतन स्थिति में देते। यहाँ 36 निषेक अवशेष रहे उदयावली के 4 माने हमने और गुणश्रेणी के 12 माने 8 माने सॉरी 5वें से 12वें तक यानी वो 8 माने टोटल 12 हो गए 12 गए तो 36 निषेक अवशेष रहे। अभी उसमें भी अंत किया वो अतिस्थापना वाली छोड़ देना तो अंत के 4 निषेक अतिस्थापना रूप छोड़कर अवशेष 13वें से लेकर 44 तक 32 निषेकों में नाना गुणहानि की रचना युक्त चयहीन क्रम से मिलाते थोड़ा थोड़ा घटते घटते नाना गुणहानि का स्वरूप हमने बताया आधा होता है तब हम कहेंगे एक गुणहानि हुई और आधा हुआ दूसरी गुणहानि और आधा हुआ तीसरी गुणहानि तो चय घटते क्रम से दिया जाता है। इसी तरह दार्ष्ट्रांत में यानी एक्चुअल में यथार्थ में यथासंभव प्रमाण जानकर स्वरूप जानना यानी वहाँ कितने टोटल निषेक है उसकी कहेंगे इतने निषेक उपरीतन के है गुणश्रेणी का जितना अंतर्मूर्त है उसको बताएंगे आवली का प्रमाण सर्वत्र जघन्य युक्ता संख्यात होता है उसको कहेंगे वहाँ पर। परंतु समझने के लिए यहाँ उन्होंने काल्पनिक संख्याएं बताकर यानी एक आइडिया हमें आती है। अब आगे देखते हैं चयहीन क्रम से और असंख्यात गुणा क्रम से मिलाने का विधान आगे कहेंगे क्योंकि यहाँ चयहीन कहने से कुछ समझ नहीं आता चय क्या है हीन क्या होता है और असंख्यात गुणा क्या होता है तो जहाँ वो विषय आएगा वहाँ समझाएंगे। यहाँ यह उदयावली के बाह्य गुणश्रेणी आयाम का स्वरूप दिखाया क्या कहते हैं नीचे उदयावली है और उसके ऊपर गुणश्रेणी आयाम है ये नीचे उदयावली के कुछ निषेक और ऊपर ये गुणश्रेणी आयाम के निषेक उदयावली के बाह्य ने ऊपर उदयावली तो आवली काल प्रमाण निषेक है और उसके ऊपर गुणश्रेणी बनी यहाँ इन्हें अभी जो डिस्क्रिप्शन किया वहां सकते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ यह उदयावली के बाह्य गुण श्रेणी आयाम का स्वरूप दिखाया, क्योंकि आवली के चार माने, फिर गुण श्रेणी के और आठ माने कहीं अन्य जगह। अभी जैसे श्रेणी चढ़ते समय आदि, अभी वो कहाँ जहाँ उसका विषय आएगा वहां पर कहाँ आता है, वो अभी अपने को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो कहीं उदयादि गुण श्रेणी आया, क्या शब्द आया, उदयादि, जहाँ आदि लगता है उसका अर्थ क्या, उदय के समय से लेकर। पहले तो आवली छोड़ी थी नीचे, पहले आवली छोड़ी थी, आवली में तो क्रमहीन से दिया था और ऊपर गुण श्रेणी में असंख्यात गुणासर दिया था। कहीं कहीं क्या होता है, ये बिल्कुल उदय के समय में जितना दिया, ये ऑलरेडी यहाँ निषेक थे ना इस तरह से, अभी इस तरह से जो कुछ निषेक थे उसमें गुण श्रेणी भी बनी थी। तो ये गुण श्रेणी अभी कैसी रचना होती, उदय के समय से लेकर गुण श्रेणी हो जाती। उदय रूप निषेक में जितना दिया, दूसरे में असंख्यात गुना, तीसरे में उससे असंख्यात गुना, चौथे में जहां तक गुण श्रेणी है वहां तक असंख्यात गुना असंख्यात। तो ये गुण श्रेणी ऐसी रचना कहां से दिखती, उदय के समय से ही दिखती। तो उसको क्या कहें, उदयादि। वहां अपकृष्ट द्रव्य में से कितने ही द्रव्य को तो गुण श्रेणी आयाम प्रमाण, जो वर्तमान समय संबंधी निषेक से लेकर निषेक है, वर्तमान समय संबंधी ने उदय रूप निषेक से लेकर जो निषेक है उनमें असंख्यात गुणा क्रम से मिलाते, यानी वहां दो ही रचना होती है, उदयावली अलग नहीं है, उदय से समय से लेकर गुण श्रेणी और ऊपर घटते क्रम से, चाहे हीन क्रम से ऊपर दिया जाएगा, नीचे उदय के समय से लेकर गुण श्रेणी और ऊपर चयहीन क्रम से। असंख्यात गुणा क्रम अवशेष को उपरीतन स्थिति में मिलाते। यहाँ गुण श्रेणी आयाम में उदयावली गर्भित हुई, ख्याल में आई बात, उदय के समय से लेकर आवली काल तक जो निषेक है उनमें तो गुण श्रेणी रूप भी रचना हुई है, वो गुण श्रेणी में ही इंक्लूड हो गई अंदर, इसलिए इसे उदयादि गुण श्रेणी आयाम कहते हैं। समझ में, उदयादि किसको कहना, उदय के समय से लेकर जहां गुणित प्रमाण में, असंख्यात गुणित प्रमाण में वो अपकर्षित द्रव्य दिया जाता है उसको उदयादि गुण श्रेणी आयाम कहेंगे, या उदयादि गुण श्रेणी कहेंगे। गुण श्रेणी के निषेकों के प्रमाण मात्र जो यह गुण श्रेणी आयाम कहा, गुण श्रेणी आयाम किसको कहें, आपका कोई प्रश्न है? हाँ, हाँ मर्ज हो गए ने, उदयावली किसको कहेंगे, जो एक आवली प्रमाण निषेक, अब उसी में द्रव्य किस तरह से दिया, असंख्यात गुण असंख्यात, तो गुण श्रेणी का ही नीचे का पार्ट है वो उदयावली कहेंगे हम। परंतु उदयावली में अन्यथा कैसे देते थे, क्रमहीन देते थे, वैसा नहीं देंगे, यहाँ असंख्यात गुणा क्रम से देंगे, यानी वो मर्ज हो गई आपकी भाषा में, यानी वो उदयावली उसी में इंक्लूड है, यहाँ बताया ना गर्भित हो गई उसी के अंदर है।
अब हाँ,
क्यों, क्योंकि वहाँ विशुद्धि इतनी ज्यादा है कि उदय के समय से वो गुण श्रेणी रूप से दे दिया, और वो फिर वो उदय में आएगा तो ऐसे अधिक अधिक निर्जरा हो जाती है, उसकी गुणित प्रमाण में निर्जरा भी शुरू हो जाती। अब आगे, गुण श्रेणी के निषेकों के प्रमाण मात्र जो यह गुण श्रेणी आयाम, गुण श्रेणी आयाम यानी गुण श्रेणी की लंबाई, गुण श्रेणी की लंबाई का अर्थ क्या होता है, अभी कहीं पर वो उदय से समय से लेकर हो या अन्यथा हो, जितने निषेकों में गुणित प्रमाण में दिया जाता है, कितने समय में, तो हमने देखा अंतर्मूल, तो ये जो लंबाई है इसी को आयाम कहते हैं, उसमें नंबर ऑफ निषेक कितने हैं तो हम काल की भाषा में बताएंगे, क्यों, क्योंकि एक एक समय करके वहां एक एक निषेक है, तो हम अंतर्मुहूर्त ये जो काल का यूनिट है वो यहाँ निषेकों की संख्या बताने के लिए हम पकड़ते हैं। जैसे उदय रूप जो आवली प्रमाण जो निषेक है उसको उदय आवली कहे, आवली तो काल का यूनिट है, एक समय में एक निषेक है तो जितने समय है उतनी उसकी लंबाई कहेंगे, उसको उसका आयाम कहेंगे। हमें कितने निषेकों में गुणित प्रमाण से दिया जाता है तो उसके लिए कहेंगे ये गुण श्रेणी का आयाम। 48 नहीं आयाम, उसमें हमने 5 से लेकर 12 तक 8 निषेकों में ही गुण श्रेणी में दिया था, टोटल 48 थे। नहीं नहीं वो टोटल है, वो तो स्थिति है पूरी, टोटल सत्ता में पड़ा हुआ है। देखो देखो नीचे 4 तो आवली है उदयावली, फ्रॉम 5th to 12th 8 जो निषेक है तो क्या है गुण श्रेणी आया, और उसके ऊपर जो रिमेनिंग 36 है वो उपरीतन स्थिति। देखो ये हमने अभी गणित पढ़न 5 से 8 5 से 12 टोटल 8 हुए, पहले 4 ये 8 12 हुए, 48 में से 12 गए,
13 से 44
हाँ वो 12 गए और वो ऊपर के 4 में नहीं दिया जाएगा, 12 4 16 निकाले हमने, 32 ले रहे।
आयाम जो है वो 4 से लेके
5 से लेकर 12
से लेके
12 तक गुण श्रेणी का आयाम देख रहे हो, गुण श्रेणी का आयाम देख रहे हाँ। उपरीतन का आयाम तो जो रिमेनिंग है उसको कहेंगे। देखो गुणश
उसमें
उसको उदयादि कहते हैं। अब और एक शब्द आएगा, देखो ये जो गुण श्रेणी आयाम किसको कहेंगे वो ख्याल में ही, जितने निषेक है जितने निषेकों में गुणित प्रमाण में दिया जाता है उन निषेकों की संख्या को गुण श्रेणी आयाम कहेंगे। वह यानी जो गुण श्रेणी आयाम है वह कहीं गलितावशेष होता है कहीं अवस्थित होता है। अभी इसका अर्थ देखेंगे तो हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 अच्छा 6 ही लेते हैं, 6 निषेकों में गुणित प्रमाण में द्रव्य दिया जाता है ऐसा हम मान लेंगे। नेक्स्ट समय में क्या होगा अभी जहां जहां अवस्थित है उसकी बात पहले करेंगे। अवस्थित का अर्थ है गुण श्रेणी का जो आयाम 6 का 6 ही कायम रहेगा। ये कैसे हो सकता है, नीचे का एक निषेक उदयावली का उदय में आया बराबर है, तो फिर क्या होगा ऊपर का गुण श्रेणी का एक निषेक उदयावली में इंटर होगा, क्योंकि उदयावली तो फिक्स है, आवली प्रमाण निषेक तो कायम रहेंगे वहां पर, उसी को उदयावली कहेंगे। तो ये जो गुणित प्रमाण में यहाँ दिया जाएगा वो उदयावली में आ गया, तो गुण श्रेणी के 5 ही रहे ना। तो कहते हैं अभी जो उपरीतन स्थिति का एक निषेक था उसमें गुणित प्रमाण में दिया जाएगा तो ये गुण श्रेणी उसमें, यानी नीचे नीचे एक निषेक गलता जाएगा और गुण श्रेणी में ऊपर ऊपर से एक निषेक आएगा तो ये 6 के 6 अवस्थित रहेंगे। 6 नहीं जो अंतर्मूल प्रमाण होगा उतना का उतना रहेगा, उसको कहेंगे अवस्थित गुण श्रेणी आया, क्योंकि जितना अधिक मात्रा में हर समय इतना गुणित प्रमाण में दिया था जब वो उदय रूप होता है तो इतनी सारी निर्जरा हो जाएगी क्योंकि वो तो गलने वाला है, परंतु बाय दैट टाइम ऊपर से उसमें आते रहता है, इसको क्या कहेंगे अवस्थित गुण श्रेणी आया। अवस्थित यानी उतना का उतना फिक्स, कल बात आई थी तत्वार सूत्र में किसको कहा था अवस्थित, नित्य अवस्थित अरूपाणि, अरूपाणि किसके लिए कहा था, द्रव्यों के लिए कहा, जैसा उसका रचना उसका जो स्वरूप है वैसा का वैसा कायम रहता है ना। अब देखो यहाँ पर ये क्या, ये अवस्थित गुण श्रेणी आयाम किसको कहते वो बात हो गई। अब दूसरा क्या शब्द है, गलितावशेष, गलितावशेष करते गलित और अवशेष, गलित होने नहीं नीचे से गल जाना, एक एक समय पास होता है तो गुण श्रेणी का एक एक निषेक उदयावली में एंटर होता है, क्यों क्योंकि उदयावली का एक एक निषेक उदय रूप होकर निकल जाता है, तो इसका एक निषेक नीचे आएगा तो 6 हो गए तो ये 5 रह जाएगा, फिर पांच के चार हो गए, चार के तीन हो जाएंगे, ये नीचे नीचे आता है, गलता चला जाता है, यानी गुण श्रेणी वो नीचे ऊपर से उसमें नहीं आ रहे, गुण श्रेणी रूप से नहीं आ रहे और नीचे वो गल रही है। अब वो कहाँ होता है, वो जब उसका प्रोसेस आएगा कहीं, कहाँ उदयादि होती है, कहाँ गलितावशेष होती है, कहाँ वो अवस्थित होती है, उसकी चर्चा केवल यहाँ वो नाम से परिचय करा रहे हैं। वहाँ गलितावशेष, गलितावशेष यानी नीचे से एक एक गल जाने वाला है, एक एक कम हो जाएगा, गलितावशेष, अवशेष यानी गल जाने के बाद जितने बाकी है उसको गलितावशेष कहेंगे। गलितावशेष गुणश्रेणी के प्रारंभ करने के प्रथम समय में गुणश्रेणी आयाम का जो प्रमाण था उससे एक एक समय व्यतीत होने पर यानी बीत जाने पर द्वितीय आदि समयों में यानी दूसरे में तीसरे में चौथे समय में गुणश्रेणी आयाम क्रम से एक एक निषेक से हीन होकर जो अवशेष रहता है उसका नाम गलितावशेष है, क्योंकि अंतर्मूल प्रमाण निषेक होते हैं उसमें, और उसमें से जो कुछ थोड़े बीत गए नीच निकल गए तो बाकी बच्चे हम उसको कहेंगे गलितावशेष गुणश्रेणी आयाम। दिव्याबेन ख्याल में आती बात, परंतु अवस्थित गुणश्रेणी आयाम के प्रारंभ करने के, अवस्थित का अर्थ क्या है, उतनी की उतनी रहेगी, तो अवस्थित गुणश्रेणी आयाम प्रारंभ हुआ तो पहले समय में जितना आयाम था दूसरे समय में बढ़ेगा कि कम होगा, भाई क्या होगा, उतना का उतना रहेगा, इसीलिए उसको अवस्थित कहा। तो अवस्थित गुणश्रेणी आयाम के प्रारंभ करने के प्रथम द्वितीय आदि समयों में गुणश्रेणी आयाम जितने का उतना ही रहता है, इसीलिए उसको अवस्थित कहेंगे। हाँ, बावले नहीं, वो असंख्यात गुण, असंख्यात गुणा दिया।
हाँ,
बड़ा बड़ा होता है। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, नहीं नहीं उसमें जितने कोई जो इंटेंसिटी वहाँ पर है उसका तो अलग से प्रोसेस बताएंगे। अभी मान लेते इतने ऐसी गुणश्रेणी थी और नीचे उदयावली भी थी इस तरह से, हम ऐसे दिखाएंगे। अब क्या हुआ, ये नीचे आते 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 क्या हुआ, नीचे आ रहे सारे, उदयावली में ये तो नीचे गिर गए तो इसको भी उदयावली कहेंगे, तो उदयावली में भी कैसे इस तरह से रचना होगी और उसके ऊपर गुणश्रेणी और ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि प्रत्येक समय में बहुत बहुत आ रहा है, प्रत्येक समय में ऊपर। हाँ, कौन सी, अवस्थित वाली, अवस्थित वाली वहीं पर रहेगी, नीचे गल जाएगा, गुणश्रेणी का एक निषेक वो नीचे आएगा तो दूसरे ऊपर के निषेक उसमें आ जाएगी ना, बड़ा है तो अब बड़ा अधिक मात्रा में खिर जाएगा। नहीं नहीं, उनका कहने वो फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या, ऐसा नहीं होता, ये ऐसी छोटा पहले वाला निकल गया। बहुत बड़े है ये, बहुत बड़े है, देखो ऊपरी तम के ऐसे है, फिर ये जब नीचे खिर जाएगा तो यहाँ का एक निषेक में और अधिक दिया जाएगा, इतना दिया जाएगा कि उससे भी ज्यादा हो जाएगा, और ये उदयावली में आएगा, उदयावली में आएगा तो ओरिजिनल जितनी, हाँ ओरिजिनल जितनी उदयावली थी अभी उदयावली के निषेक भी बड़े 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 आ रहे नीचे, क्यों, गुणश्रेणी के उदयावली में एंटर हो गए, तो पहले जो ऑर्डिनरी निषेक थे अभी गुणश्रेणी के उसमें आ गए, तो बड़े बड़े निषेक होने का अर्थ क्या है, अधिक मात्रा में परमाणु खिर जाएगी, निर्जरा होगी कर्मों की, गुणश्रेणी के बिना ऐसी वो निर्जरा नहीं होगी। अब वो कहाँ होती है, क्या होती है, वो विषय अभी आ गया, अभी तो हम 1 2 3 4 सीख रहे हैं, और उसके वो मल्टीप्लीकेशन वगैरह वो बाद में
था। एक चार ऐसा कहना है जो ग्रीटर सिटी में से आता है तो बड़ा कैसा होता है?
हाँ, उसमें अधिक मात्रा में द्रव्य दिया जाता है, बहुत ज्यादा दिया जाता है। ये जो नेक्स्ट समय में जो अपकर्षित द्रव्य होगा हर समय में, हाँ ये हर समय अपकर्षण चल रहा है। ऐसा नहीं कि एक ही बार आया और वो सब दिया, ऐसा नहीं है, वो प्रोसेस कंटिन्यूअस चल रहा है, हर समय चल रहा है। हाँ, अपकृष्ट द्रव्य, अपकृष्ट द्रव्य, अपकृष्ट द्रव्य हर समय निकलता है और हर समय उसमें दिया जाता है। ये हर समय कार्य चल रहा है, उधर भी चल रहा है, एक बार जो वो गुण श्रेणी में भी आ रहा है। यानी ये तो एक दो एट ए टाइम बता रहे, वहां तो बहुत सारे प्रोसेस एट ए टाइम चलते हैं। वो स्थिति कांड घात भी हो गए, स्थिति बंधापसरण भी होगा, वहां होने योग्य सभी कार्य एट ए टाइम चल रहे हैं। उसमें अनुभाग का घात होना जो है अशुभ में घात होगा, शुभ में और बढ़ोतरी होगी। सब जीव के लिए फेवरेबल है, परंतु जीव को मालूम ही नहीं ना हमारा कल्याण किसमें। हाँ, ये खीर रहे, तभी तो हम तत्वार सूत्र में रोज गाते हैं क्या, वेत्तारम कर्म भूभृतम, भूभृत ने पर्वत, मंगलाचरण जो तत्वार सूत्र का है ना, आप आते हैं ना रोज, क्या लिखा है उसमें?
मोक्ष मार्ग
से नेतार, मोक्ष मार्ग के जो नेता है, वेत्तारम कर्म भूभृतम, भूभृत ने पर्वत, कर्मों के पर्वतों को वो तोड़ रहा। अभी इतने हैं, कितने ही बार अभी ऐसे प्रोसेस कहेंगे, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे करोड़ों 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 बार चल रहे हैं, तभी जाके फिर भी इतने साल तक चलता रहता है। हम देखते हैं ना, हमें ऐसा लगता है उन्होंने मुनि दीक्षा ली, तीर्थंकर तो होने वाले, तो इतने कोई 12-12 साल, कोई कितने कितने साल, ये आदिनाथ कितने साल थे जो मुनि दीक्षा के बाद केवल ज्ञान कब हुआ? हजार वर्ष, तो इतना काल क्यों लगा? तो ये क्यों, क्या सब सब इसमें आने वाला है? ये केवल वो शिखर जी में जाके वहां माथा टेकने से कुछ नहीं होगा, वहां क्षपना कैसी की वो जानेंगे तो कुछ होगा। वो तो कुछ जानने लायक समझते नहीं, हम यात्रा कर दी बहुत अच्छे, क्यों हमने मेहनत की, ऊपर चढ़ के पर्वत चढ़कर नीचे आ गए, बहुत अंग यानी वो शरीर बदन दुख दर्द हुआ तो मसाज करके लिया, क्या क्या किया, सब कुछ किया,
बदन भी छोटा हो गया और छोटा।
अभी इस उम्र में चढ़ नहीं सकते तो उसको हजारों रुपए देंगे फिर भी जाके आएंगे, परंतु इतनी ये मेहनत लगती है उनको, वो मेहनत नहीं लगती, वहां तो कृतकृत्य लगता है, उसका निषेध नहीं हो। बिल्कुल यात्रा के भाव आएंगे, क्योंकि जिस क्षेत्र से कोई जीव मोक्ष गया है, परंतु वहां जाने के बाद क्या सोचेंगे हम, एक सपना कैसे की होगी क्या पता, इतना ऊपर आके बैठे थे इतना मालूम है। तो अंदर क्या क्या प्रोसेसेस हुए होंगे, अंताक्षरी। चलो चलो अभी अभी आगे बढ़ेंगे, ये समझ में, अवस्थित गुण श्रेणी उतना का उतना रहता।
हमारे जो निर्माता थे तो कहते अभागा, कहीं यात्रा ही करता नहीं, क्या होगी यात्रा करते, क्या सोचना चाहिए, क्या कैसे भी यहाँ पे चाहिए, हर पैर के नीचे एक ही चीज गया है और पूरा पहाड़ी पहाड़
कहते हैं। अनादि से वहाँ कितने आनंद जी वहाँ से, देखो देखो हमें अभी क्या पढ़ा, अवस्थित में जितना का उतना रहता है, जो जो एक एक समय व्यतीत होता है त्यों त्यों गुण श्रेणी आयाम के अनंतरवर्ती, अनंत यानी उसके ऊपर, इमीडिएट नेक्स्ट, ऐसा उपरीतन स्थिति का एक एक निषेध गुण श्रेणी आयाम में मिलता है, वहां अवस्थित गुण श्रेणी आयाम कहते हैं। ये बात ख्याल में आई, इस गुणश्रेणी आयाम के अंत निषेकों का नाम कहीं गुणश्रेणी शीर्ष कहा है, शीर्ष यानी टॉप मोस्ट, टॉप उसका सर, तो शीर्ष गुणश्रेणी शीर्ष कहा, किसको कहा, अंतिम निषेक को, और कहीं क्या कहा, कहीं अंत के एक निषेक का ही नाम गुणश्रेणी शीर्ष है, कहीं कहीं अंत के अनेक निषेकों को मिलकर गुणश्रेणी शीर्ष कही है। अभी जहां जो अपेक्षा कही हो वहां उसको समझना, और कहीं अंतिम लास्ट एक ही निषेक को गुणश्रेणी शीर्ष कहा, वो समझाएंगे जहां विषय आएगा वहां स्वयं कहेंगे।
हाँ,
शीर्ष बहुत बहुत, पांचवे से बारहवें तक गुणश्रेणी आयाम है, तो बारहवें नंबर का है वो गुणश्रेणी शीर्ष, बहुत अच्छा। हाँ, दूसरा आएगा तो उसको शीर्ष कहेंगे हम। यदि अवस्थित गुणश्रेणी आयाम है तो शीर्ष हर समय बदलेगा, नए नए निषेक उसमें शीर्ष रूप से एंटर होगा, और यदि गलितावशेष है तो शीर्ष नीचे नीचे आएगा, क्योंकि वो छोटी हो रही ना, वो ऊपर का टॉप मोस्ट निषेक तो वही, उसका नंबर कोई दूसरा नहीं लेगा, वो भले अभी उदय के समय के दंस्ती का आ रहा, परंतु शीर्ष का शीर्ष ही रहेगा। अब आगे इस तरह, क्योंकि शीर्ष नाम ऊपरवर्ती अंग का है, इस तरह विवक्षित स्थान में यथासंभव प्रमाण जानकर, विवक्षित स्थान में यानी किसकी बात चल रही है, औपशमिक समय तो हो रहा है कि दर्शन होने की क्षपना हो रही है, कि उपशम श्रेणी चल रहा है, कि कर्मों की वो क्षपना क्षपक श्रेणी चल रहा है, क्या हो रहा है, तो कहते उस स्थान में यथासंभव प्रमाण जानकर, वो बताएंगे कहाँ क्या प्रमाण होता है, गुणश्रेणी निर्जरा का विधान जानना, गुणश्रेणी रचना होती है और जब वो उदय रूप होकर खिर जाती है तो अभी निर्जरा कैसे हो रही है, गुणश्रेणी, क्योंकि जितना असंख्यात गुणा द्रव्य दिया है उतना असंख्यात गुणा खिरेगा कि नहीं खिरेगा, इसलिए उसको कहेंगे गुणश्रेणी निर्जरा, गुणित प्रमाण में निर्जरा होगी। पहले अज्ञानी अवस्था में कितनी, एक समय प्रबद्ध बनता था, एक समय प्रबद्ध खिरता था, अभी वो एक जो सत्ता का एक समय प्रबद्ध है उसमें ऊपर से कितना ही अपकर्षित द्रव्य आ मिलता है, तो आ मिला हुआ द्रव्य असंख्यात गुणा है, ओरिजिनल सत्ता का तो निषेक था ही था, ये सब मिलकर वहां कुछ अधिक कुछ अधिक कुछ अधिक ऐसी निर्जरा चलती रही। यहाँ उदयावली में दिए हुए द्रव्य का नाम उदीर्णा है, अभी जो अपकर्षित द्रव्य है जिसको उदयावली में दिया उसको क्या कहेंगे, उदीर्णा। जहां अल्प स्थिति सत्व अवशेष रहता है वहां गुणश्रेणी का भी अभाव होता है, जब क्षपणा वगैरह चलती है तो ये गुणश्रेणी होते 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 इतना छोटा रह गया, अभी गुणश्रेणी नहीं होगी, जैसे हमने कल देखा था स्थिति कांडक होते 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 छोटा कम छोटा काल बच गया, स्थिति कांडक रुक गए, वैसे गुणश्रेणी होते 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 अभी वो रुक जाएगी। अपकृष्ट द्रव्य के कितने ही द्रव्य को उदयावली में देकर अवशेष द्रव्य को उपरीतन स्थिति में देते हैं, क्योंकि यहाँ क्या कहा, गुणश्रेणी का अभाव हुआ ना, अब क्या होगा, एक उदयावली और उपरीतन स्थिति, तो अपकृष्ट द्रव्य उदयावली में दिया जाएगा और उपरीतन स्थिति में भी दिया जाएगा। एक समय अधिक आवली मात्र स्थिति अवशेष रहने पर आवली के ऊपरवर्ती एक निषेक के द्रव्य को अपकर्षण करके उदयावली के निषेकों में एक समय कम आवली के दो त्रिभाग मात्र निषेकों को अतिस्थापना रूप से छोड़कर समय अधिक आवली के त्रिभाग मात्र निषेकों में मिलाते, इसको समझेंगे बहुत आसान है, कुछ चिंता की बात नहीं। अभी कि हमने क्या देखा था, मात्र उदयावली में और उपरीतन स्थिति में, ये उदयावली और उपरीतन स्थिति जो कुछ है, कभी कभी ऐसा भी देखेंगे तो उदयावली में दे रहे हैं और उपरीतन स्थिति में दे रहे हैं। उदयावली के ऐसा कब तक, तो बीच में गुणश्रेणी नहीं हो रही है। तो यहाँ का द्रव्य उदयावली में भी दिया जाएगा, ऊपर भी दिया जाएगा। इस तरह से जब गलते गलते गलते, क्योंकि अन्य भी प्रोसेसेस हो रही है, मान लेते हैं यहाँ चार निषेक ऊपर रहेंगे और नीचे 16 निषेक हम उदयावली के मानेंगे। गणित समझाने के लिए बता रहे, 16 समयों की आवली मानेंगे। तो अपकर्षणी ने उदीर्णा कहाँ से होगी, इन चार में से नीचे चले जाएंगे। अब इसका एक निषेक गल गया, आवली तो 16 ही समयों की कहलाएगी, ऊपर के 3 निषेक बचे जिनकी उदीर्णा होगी। और एक निषेक गया, ऊपर 2 ही बचे, और एक गया, ऊपर 1 ही बचा। यानी अभी पोजीशन क्या हो गई, ये हमने 16 माने हैं और ऊपर का भी 1 ही निषेक है जिसमें उदीर्णा होकर उदयावली में द्रव्य आएगा, परमाणु आएगी। तो आए हमेशा तो हमने देखा था जिसमें से जाना है नीचे वो तो आवली प्रमाण तो अतिस्थापना होती है, परंतु इस एक निषेक के परमाणु जब नीचे आएंगे तो उसके लिए कितनी अतिस्थापना है। तो देखो एक वाक्य पढ़ेंगे, 27 की पहली लाइन, एक समय अधिक आवली मात्र स्थिति अवशेष रहने पर। देखो हमने आवली के 16 समय माने हैं और उसके ऊपर एक समय अधिक, यानी 17 समय बाकी हमारे पास। 16 समय तो हमने आवली के माने, क्या होगा, आवली के ऊपरवर्ती एक निषेक के द्रव्य को 17 नंबर के निषेक में जो द्रव्य है टोटल उसको भागार देंगे, उसमें से थोड़े परमाणु नीचे आएंगे, अपकर्षण करके उसको कहाँ देंगे, तो उदयावली में देंगे। पर उदयावली के कहाँ देंगे और कहाँ नहीं देंगे तो वो बताते हैं, उदयावली के निषेकों में एक समय कम आवली, हमने आवली कितनी मानी है, 16 में एक समय कम कितना हुआ, 15। तो एक समय कम आवली यानी 15 के 2/3, 2/3, 15 का 2/3 कितना होता है, 10। उसको अतिस्थापना रूप छोड़कर यानी 16 निषेकों में से 10 निषेकों को अतिस्थापना रूप छोड़कर समय अधिक आवली का 3/3, ये जो हमने एक समय अलग बात बाकी निकाला था, 15 हुए थे उसका 3/3 5 था, उसमें वो एक समय मिला दिया तो 6 हो गए। तो 6 निषेकों में मिलाते हैं, ख्याल में यही बात। यदि हम 16 समय की आवली मानते हैं तो उदीर्णा होते होते एक ही निषेक बचा उदयावली के ऊपर, तो उस एक निषेक में से यथा योग्य परमाणु नीचे आएंगे, ऊपर के उसके नीचे के 10 निषेकों में नहीं देंगे और नीचे के 6 निषेकों में दिए जाएंगे। देखो ये नीचे के 6 और ऊपर के 10, इसके लिए हमने क्या किया, 16 में से एक कम किया, 15 हुए, 15 का 2/3 और 1/3 किया, 15 का 2/3 है 10, 15 का 1/3 है 5, और वो आवली का एक समय जो हमने अलग से निकाला था उसको यहाँ पर मिला देना, तो 6 निषेकों में दिया जाएगा द्रव्य। आवली में से एक समय कम कर दिया, 16 में से एक कम किया, 15 रहे, उसका 2/3 10 होते हैं, तो 10 में नहीं दिया जाएगा। 17 नंबर का निषेक है उसका द्रव्य नीचे आकर्षण करके उदीर्णा रूप होकर उदयावली में आएगा, तो वो कहाँ दिया जाएगा, ऊपर के 10 में नहीं दिया जाएगा, नीचे के 6 में दिया जाएगा। ख्याल में, इनकी भाषा समझने में जरा अटपटी लगती है ना, कि एक समय कम 3/3 क्या है, 2/3 क्या है, तो हम उसको संदृष्टि बनाते हैं, काल्पनिक संख्या मानते हैं, तो समझने में आसान हो जाता है। वहां जघन्य उदीर्णा नाम पाता है, क्या कहा, पहले उदीर्णा होती थी, मान लेते किसी के कोड़ा कोड़ी सागरों के अनेक कोड़ा कोड़ी सागरों के निषेक पड़े, तो जब अपकर्षण होता है तो सभी निषेकों में नीचे आ जाते हैं, तो सभी निषेकों में उदय के समय से लेकर सर्वत्र दिया जाएगा, तो उदीर्णा कितने में से हुई, तो जितने बाकी है उदयावली के ऊपर उन सब में से उदयनाम, जैसे हमने 48 समय यहाँ मान लिए थे, 48 निषेक मान लिए थे, उसमें उदयावली के हमने चार माने, तो कहाँ कहाँ से द्रव्य आएगा ऊपर से, ये चार छोड़ो तो 44 निषेकों में से द्रव्य सर्वत्र दिया जाएगा। तो सर्वत्र दिया ना, ऊपर के तो उदय के समय से लेकर सर्वत्र दिया जाएगा, ख्याल में आती है ना भारत। तो यहाँ क्या कहना चाहते हैं, तो वो तो मैक्सिमम उदीर्ण हम कहेंगे, उत्कृष्ट स्थिति होगी तो मैक्सिमम उदीर्ण। अब करते करते आवली के ऊपर एक ही निषेक बाकी है, तो कितने निषेकों में से उदीर्ण हो रही है, एक ही निषेक में से, एक ही निषेक में से, उसको क्या कहेंगे, जघन्य उदीर्ण, क्योंकि अभी निषेक ही नहीं ना बाकी जिसमें से वो अपकर्षण हो जाए। तो जघन्य उदीर्णा नाम पाता है, इसको कहेंगे जघन्य उदीर्ण। इस तरह अपकृष्टि विधान है, ये जहां सत्व का नाश हो रहा है, अधिक मात्रा में परमाणु फिर जाते हैं, तो वहां ये अपकर्षण विधान है। सामान्य रूप से अपकर्षण चलता है, सामान्य रूप से उदीर्णा होती है, वो अलग है। और यहाँ दर्शन और चारित्र की लब्धि से क्या क्या होता है उसकी बात चल रही है, और यहाँ जो अधिक मात्रा में अपकर्षण होता है और अधिक मात्रा में उदीर्णा होता है, यहाँ ऐसा जानना। हमने दो प्रोसेस देखे, कौन से दो, स्थिति घटने के, यानी सत्ता में जो परमाणु है वो कम होते चले जाते हैं, स्थिति सत्व भी घटता है, वहां कुछ प्रदेश भी अधिक निकल जाते हैं। एक का नाम है स्थिति कांडक घात, और एक अभी हमने देखा अपकृष्टि विधान, दो देखे ना। तो यहां ऐसा जानना, कांडक विधान से तो स्थिति सत्व मूल से ही घटता है। स्थिति सत्व का अर्थ है सत्ता में जो निषेक है उनकी स्थिति, कितने निषेक पड़े, 1 2 3 4 कहां तक है, कितने काल वाले निषेक वहां पड़े, उसको ये स्थिति सत्व, जैसे कोड़ा कोड़ी से अंत कोड़ा कोड़ी हो जाए तो क्या कहेंगे, वो स्थिति सत्व मूल से ही घटा, क्योंकि निषेकों का वहां घात हुआ, अभाव हुआ, क्योंकि वहां ऊपर के कितने ही निषेकों का नाश करके स्थिति घटाते, ये बात ख्याल में आई। वहां निषेक नहीं रहे, उनके सभी के सभी परमाणु नीचे के निषेकों में आ मिले, परंतु अपकृष्टि विधान से ऊपर के निषेकों के कुछ परमाणु की ही स्थिति घटाते, सत्ता के पूरे निषेक नहीं घात होते, यानी सत्ता में स्थिति कितनी तो उतनी ही कहेंगे, क्योंकि उस निषेक ने तो अपनी जगह तो छोड़ी नहीं है, उसका घात तो हुआ नहीं है, कुछ परमाणुओं की स्थिति घट गई। मूल से निषेकों का नाश नहीं होता, इसलिए मूल से स्थिति सत्व का घटना नहीं होता, ये बात ख्याल में आई। जहां कांडक घात होता है वहां अनेक वो पल्लों के असंख्यात भाग, जो यथायोगी जितना है उतने उतने कांडक कट होते चले जाते, उतनी स्थिति घटती चली जाती, उतनी स्थिति घटती चली जाती, एक एक अंतर में। अपकृष्टि विधान से स्थिति उतनी की उतनी बनी, पर उसमें से अपकर्षण बढ़ गया, अपकर्षण बढ़ गया, वो उदय उदयावली में जाएगा, गुण श्रेणी में जाएगा, जो कुछ है, और अधिक मात्रा में खिर जाएगी परमाणु, तो वहां स्थिति में कुछ चेंज, वो तो एक एक समय से गलेगी उतनी गलेगी। स्थिति सत्व में आवली मात्र अवशेष रहने पर उसका नाम उच्चिष्ट आवली है। देखो स्थिति सत्व घटते घटते, ये घटते कब हो जाएगा, जब क्षपणा होती है तब घटते चला जाएगा। अब मान लेते वो तो श्रेणी चल रहा है, क्रोध का उदय चल रहा था और उसके आवली प्रमाण निषेक बाकी रहे, शपक श्रेणी चल रहे हैं मान ले, तभी क्या होगा, आवली का उदय नहीं होगा। अब वहां मान के परमाणुओं की ऐसे कुछ रचना हो जाएगी, अभी क्या होती क्या उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। अब ये जो बाकी है, एक आवली प्रमाण निषेक बाकी, उनका अपने रूप से उदय होगा नहीं, तो अभी नीचे का जो उदय आने योग्य जो है परमाणु क्रोध के, वो मान रूप होकर इसके साथ होकर उदय में आएंगे। फिर वो दूसरा निषेक नीचे आया, वो दूसरा निषेक यहाँ के मान के साथ, वो मान रूप होकर दूसरा भी निषेक जाएगा, ऐसे आवली मात्र जो निषेक है उसका नाम क्या है, उच्चिष्टावली। उच्चिष्ट समझते हैं? नहीं समझते? थाली में हम खाना खाते हैं तो जो बचता है उसको क्या कहेंगे, बैलेंस, उसको क्या कहें? गुजराती में क्या कहते हैं? कुछ शब्द तो होगा
नहीं?
मराठी में उसको उष्ट खरकट है ऐसा कुछ कहते हैं, जूठन जूठन कहते हैं। एटू एटू, हाँ
हाँ। थाली में पानी डालने वाली बात नहीं,
वो ये पीछे जो रहता है, तो ऐसे ये पीछे जो रहता है उसको उच्चिष्ट का, ये मूल संस्कृत शब्द है उच्चिष्ट, उससे मराठी में वो उच्चिष्ट को उष्ट उष्ट कहते हैं, परंतु उष्ट का अर्थ वो अलग है, किसी ने खाया हुआ है वो तो उसको, हाँ झूठा, वो अलग बात है, झूठन जिसको कहते हैं वो बात अलग है। और ये कैसे, यहाँ तो हमें ये क्या हो रहता है उसको समझना है, हो गया समझ, ये कल देखेंगे मूल से, यहाँ ऐसा जानना, वहां से पैराग्राफ की शुरू से पढ़ेंगे, नहीं तो हम रिपीट करते ही आगे बढ़ते रहते हैं। हाँ, जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कानो सो सदा देता हूँ।